खुदावंत के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम कलाम पाक में से गुजरे अयाम में खुदावंत यीशु मसीह की दुआ पर गौर कर रहे थे कि खुदावंत खुदा को पता था कि खुदा बाप ने जो वक्त जमीन पर यीशु के लिए ठहराया है वो पूरा होने वाला है। तो खुदावंत यीशु मसीह ने अपने शिविरों के साथ इससे पहले कि यहूदा जाकर उन तमाम मजहबी रहनुमाओं के साथ अपने इस दौर के तमाम रब्बी फकी फरीसी और काहिन उनके पास जाकर यीशु मसीह की फड़वाने की और उसे धोखा देने की कीमत ले खुदावंद यीशु मसीह उस रात अपने शिगिर्दों से बातचीत कर रहे हैं। और ये वाकया हमें यूहन्ना की इंजील 13 बाप उसकी पहली आयत से लेकर 17वें बाप तक मिलता है। ये एक लंबी गुफ्तगू है जो उस रात खुदावंद यीशु मसीह और उसके शिगिर्दों के दरमियान हुई। और इसी हिस्सा में से हम सीखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम 13वें बाप को देखें तो ये उस शाम का वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह और उसके शिगिर्द खाना खाने को बैठे। अगर हम 13वें बाप की पहली आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, ईदे फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसर होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। तो ये वो शाम है जिस शाम में हमें वो बहुत सी बातें नजर आती है, जब कहा गया था कि तुम फलां शहर में जाना, वहां पर तुम्हें बड़े बड़े बंधे हुए मिलेंगे और उन बड़ों को खोल लेना। शिगिर्दों को कहा गया था कि मेरे लिए बाला खाना को तैयार करो, वहां पर हम आखिरी फसा खाएंगे। तो मत्ती की इंजील उसके 26वें बाप में जो सारा वाकया है कि यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, बरकत दी और अपने शिगिर्दों को दी, ये कौन सा वाकया है? उसी शाम का वाकया है जैसे फसा का खाना, या फिर कह सकते हैं आज के दौर में हम कहते हैं कि हमारे लिए वो अशायरवानी की यादगार की इबादत है। तो उस रात खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से जो ईद फसा की शाम थी वहां पर अपने तमाम शिगिर्दों को जिनसे मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। इससे पहले के शमाऊन के बेटे यहूदा अस्कर युति में अबलीस दाखिल हो, अबलीस उसमें सकूनत करे, अबलीस उसके अंदर जाए और उसे कहे कि वो काम जो तू करना चाहता है कि यीशु को धोखा दे उसे दे। तो 13 बाप से लेकर 17 बाप तक क्या है? ये लंबी गुफ्तगु है जो यीशु मसीह और उसके शिगिर्दों के दरमियान हुई। तो इसी तमाम बातचीत में 13वें बाप में खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बहुत से हुक्म दिए, बहुत सी बातें उनको सिखाई, एक दूसरे के पांव धो जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं। अगर हम इसे हकीकी तौर पर ले तो आज जब हम एक दूसरे के हजूर अपने आप को बेहतर जानते हैं तो हम एक दूसरे के पांव धोते हैं। ये ऐसा इजहार है जिससे इंसान एक दूसरे के पांव धोकर क्या करता है, दूसरे को एक दूसरे से अफजल जानता है। और दूसरे जो रूहानी मायने निकलते हैं जो रूहानी तौर पर करने की जरूरत है, जो वाकया ही इस हिस्सा में बात हो रही है, जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए तो उसके पीछे जो यहूदी रिवाज का सबक था, मैं तुम्हारी उन तमाम गुनाहों को गलतियों को माफ कर रहा हूं। तो यीशु मसीह ने बहुत सी बातें यहां पर की हैं। पतरस को कहा कि तू मेरा इनकार करेगा, और फिर पतरस वापस आकर खुदा यीशु मसीह के पास उसकी दी हुई उस खिदमत को करेगा कि रसूल की खिदमत को सर अंजाम दे। तो 14वां बाप वहां पर शिगिर्दों को समझाया गया है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। 15वां बाप तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं करते। 16वां बाप यहाँ पर अबलीस और अबलीस की अदालत के बारे में, और खुदा खुदा को मुजरम ठहराया जाएगा और खुदा का पाक रूह ईमानदारों के अंदर सुकूनत करेगा। सो 17वां बाप जब देखते हैं तो ये क्या है, यीशु मसीह की दुआ है। जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने की, जो लिखी गई है पूरे का पूरा बाप। जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं 17वें बाप की, तो पहली आयत क्या कहती है, यीशु ने ये बातें कही। कौन सी बातें? 13 बाप से लेकर 16वें बाप के आकर तक तमाम सच्चाइयां शागिर्दों के सामने बयान की, उनको वो भेद, कलीसिया का भेद जो अभी तक फरिश्तों से पोशीदा था। फरिश्तों को तमाम इलम नहीं है, क्यों? क्योंकि खुदा के बारे में लिखा गया है कि वो कुल इलम का मालिक है, हर एक चीज का भेद जानने वाला। फरिश्तगान को जो इलम दिया जाता है खुदा की तरफ से, वो ही दिया जाता है। जिसे कह सकते हैं कि खुदा का इलम लामहदूद है, फरिश्तों का, इंसानों का और अबलीस का भी हम कह सकते हैं कि इलम या समझ क्या है, महदूद है। जैसे खुदा हर जगह मौजूद है, अबलीस हर जगह मौजूद एक ही वक्त में नहीं हो सकता, क्यों? बाइबल मुकद्दस कहती है। वैसे ही फरिश्तगान को जो पैगाम दिया जाता है वही पैगाम वो आगे लेकर जाते हैं, अपना पैगाम नहीं देते, क्योंकि फरिश्तगान क्या है, महदूद है। महदूद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पैदा किए गए हैं, खलक किए गए हैं, खुदा ने उनको बनाया है, वो खुदा से पहले नहीं थे। ये वो सच्चाइयां हैं, ये वो भेद है जो खुदा यीशु मसीह बयान कर रहा है कि वो भेद जो फरिश्तगान से, अबलीस से, नबियों से पोशीदा रहा कि इंसान के अंदर खुदा क्या करेगा, सकूनत करेगा। और खुदावंद खुदा क्या करेगा, इंसान के अंदर रहेगा, और खुदावंद उसका खुदा क्या होगा, रहने की जगह। तो 17वें बाप में यीशु मसीह की हमें ये दुआ नजर आती है, इसलिए इस दुआ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, रूहुल कुद्दस के बारे में, कि रूहुल कुद्दस आएगा और रूहुल कुद्दस ईमानदारों की रहनुमाई करेगा। 17वें बाप में हमने ये चंद एक बातें सीखी थी। अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो इस पर हम सालों साल 13 बाप, 14 बाप, 15 बाप, 16 और 17 पालूस रसूल की जितनी इल्म इलाही की तालीम है वो सारी इन 3 बापों के इर्द गिर्द है। जितनी तालीम पालूस रसूल ने दी रूहुल कुद्दस के बारे में, यीशु मसीह के कफारा के बारे में, यीशु मसीह के फसा के बारे में, कि उसकी यादगारी में ये करें, जितने उसने हुक्म दिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की भलाई चाहो, एक दूसरे का फायदा ढूंढो, एक दूसरे के गुनाह माफ करो, चोरी ना करो, वो तमाम सच्चाइयां बालाखाना के सफर से सलीब तक के सफर को बयान करती हैं। तो ये 13, 14, 17 बाप बहुत गहरे हैं, बहुत कम पासबान इनको हाथ लगाते हैं। अगर पढ़े जाते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़े जाते हैं, और बहुत दफा जब पढ़े जाते हैं तो सही तल्लक के साथ नहीं पढ़े जाते। आज सबसे ज्यादा जो मुश्किल हमारी मसीहत में है वो ये है कि बहुत दफा खुदा का कलाम पढ़ा जाता है लेकिन उसका तल्लक हवालात के साथ नहीं मिलाया जाता। बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जाता है लेकिन दुरुस्त तरीके से उसकी तफसीर की नहीं जाती। जब भी हम बाइबल मुकद्दस की तफसीर करें, ये सच्चाइयां, ये बातें जो हम गौर कर रहे हैं, ये पासबानों के लिए हैं। जो पासबान बनते हैं ना, उनको ये तालीम दी जाती है कि इसे हिस्सा को देखें, इसमें से सवाल निकालें, इसमें से बातचीत कौन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रवाज क्या है, तारीख क्या बयान करती थी, इसके मायने क्या है। इसलिए ये बहुत गहरी सच्चाइयां हैं जो हर एक को सीखने की जरूरत है, हर एक को, ताकि हम सब अच्छे और जबरदस्त ईमानदार बन सके, ताकि हम खुद भी जब खुदा के कलाम को पढ़े तो हमें पता हो कि कौन बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तारीख इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन बहुत दफा ईमानदार पूरी तवज्जो से इन बातों पर गौर नहीं करते, इसलिए आए इस हिस्सा को देखें। और यहां पर हम खुदा यीशु मसीह की दुआ, खुदा बाप और उसके दरमियान जो बातचीत है, देखें दूसरी आयत। पहली आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए बाप, वो घड़ी आ पहुंची अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चिनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी दे। खुदा यीशु मसीह अपनी दुआ में ये बातचीत खुदा बाप से करते हुए कहते हैं कि जिन सबको तूने मुझे दिया है उनको मैं क्या दूं, हमेशा की जिंदगी दूं। आज मसीहत में सबसे बड़ी बात पर जो हमला किया जाता है, नुक्ताचीनी की जाती है, वो इस बात पर है। हम सलीबी गीत तो गाते हैं कि सलीब पर कफारा दिया, सलीब पर नारा लगाया गया, सलीब पर सात बयान दिए गए, सलीब पर ये हो गया, सलीब पर की ये काम तमाम कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मसीहत में सलीब पर ही नुक्ताचीनी उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सौओं से, सांप से भी ज्यादा कह सकते हैं कि हवाला जात है, कि लफ्ज हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उनको मिलेगी जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उनकी है जो यीशु में हैं। लेकिन बहुत दफा तालीम क्या दी जाती है, नहीं, तुम्हें ये साक्रामेंट करने की जरूरत है, तुम्हें ये रस्म करने की जरूरत है, तुम्हें खतना करवाने की जरूरत है, तुम्हें 10 अहकाम को इतनी दफा पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें फलां के लिए ये करना होगा, इतनी दुआएं करनी होगी, फिर हमेशा की जिंदगी है। अजीजों, अगर ये बात है तो फिर जो कोई ये तालीम देता है उसके मुताबिक हम सब दोजख में जाएंगे। ऐसा ही होता है जी? क्या आप यकीन करते हैं कि यीशु पर ईमान लाने के बाद आप दोजख में जाएंगे, हमेशा की जिंदगी, यानी कि उस आराम की जिंदगी में हमेशा हमेशा रहेंगे? तो सबसे ज्यादा अटैक इस तालीम पर किया जाता है कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो उस वक्त के लोगों के लिए कहा था। एक ऐसी तालीम है जिसे कैल्वन नजरिया कहते हैं, कैल्वनिस्ट। उनका सोचने का तरीका क्या है, यूहन्ना की इंजील जब देखते हैं उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, तो वहां पर क्या लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। वो इसकी तफसीर क्यों कर किस तरह करते हैं कि दुनिया से मुराद यानी कि उस वक्त जो यीशु मसीह के नजदीक लोग खड़े थे वो ही दुनिया है। तफसीर हो गई गलत, लेकिन क्या लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ऐसा नहीं लिखा कि खुदा ने इस दुनिया के खित्ते से ऐसी मोहब्बत रखी। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ें सुने बड़े फिक्र के साथ पढ़ें। और मैं आपको दलेरी से कहूंगा कि अगर मैं भी आपको गलत पढ़ाऊं तो जरूर पूछें कि पादरी साहब यहां पर गलती हुई है, इस गलती को देखें। पालूस रसूल इस बात को, पालूस रसूल का जो मरकजी पैगाम था वो क्या था, यीशु मसीह की सलीब। सलीब का पैगाम हर एक गुनाहगार के लिए क्या है, निजात का बायस है। इसलिए आज मसीहत में सबसे ज्यादा किस बात पर हमला या नुक्ताचीनी होती है, हमेशा की जिंदगी खुदा के फजल से। बहुत सी डिनोमिनेशंस जिसे कहते हैं मसीही फिरके या मिशने, खासकर उस स्टेज को तो कह देते हैं कि हमेशा की जिंदगी पर यकीन करते, जब उनके साथ रूबरू बात की जाए। बहुत से पासबानों को नहीं पता। एक पासबान को हम साथ लेकर गए, उस पासबान से पूछा कि पासबान जी, आप चाहते हैं कि आप ग्रेस बाइबल चर्च के पादरी बने, ग्रेस बाइबल चर्च की नुमाइंदगी करें, क्या आपको पता है कि ग्रेस बाइबल चर्च बाइबल मुकद्दस की तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, ना कि किसी इंसान को? उसने कहा जी जी मैंने कहा जी आपको ये पता है कि आपकी माली तौर पर भी मदद की जाएगी, हो सकता है कि ना की जाए जी। तो मैंने कहा जी आपका पैगाम क्या होगा, निजात की खुशखबरी का पैगाम क्या देंगे? पादरी साहब सादा जहा, खुदा ने दुनिया ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, ताकि जेड़ा कोई उसका ईमान लिया हमेशा की जिंदगी पाए, ये सारा पैगाम। मैं कह जी आमीन। मैंने कहा पादरी साहब जरा बताएं कि हमेशा की जिंदगी का मतलब क्या है? हमेशा की जिंदगी जी। अच्छा पादरी साहब, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है? तब पादरी साहब ने अपना पलंदा खोल के मेरे सामने रख दिया कि जी जो कोई ईमान लाए उसके साथ अगर रोजा रखे, अगर दा यकी दे, अगर दुआ के लिए जाए, अगर कोई अतवार मिस ना करे, अगर पानी का बपतिस्मा ले, और फिर उसके साथ अगर ईमानदारी की जिंदगी गुजारे तो तब निजात है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब अगर वो बंदा पांच चीजें करता है, वो रोजा रखता है, वो चर्च में जाता है, उसने दा यकी भी दे दी जो 400-500 रुपया उसका महाना है, तो अगर वो बंदा एतवार को इबादत के लिए नहीं जाता तो क्या होगा? जवाब क्या था? वो हमेशा की जिंदगी का मालिक नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब है वो दोजख में जाएगा। बात तो यही थी लेकिन कहने से डरते थे। मैंने कहा भाई साहब हमारे साथ मिलकर काम करना है तो हम यीशु मसीह की तालीम को बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कहीं भी नहीं कहा गया कि जो कोई ईमान लाएगा वो दोजख में जाएगा। मैंने कहा अगर मिलता है तो मुझे निकाल कर दे ताकि मैं भी देखूं कि किस बात ने गुमराह किया हुआ है। तो हमेशा की जिंदगी, हो सकता है आपके पास भी कोई आए। मैंने उन्हें समझाया कि जितनी आपने ये जिम्मेदारियां जो ईमानदार की हैं, दुआ जरूरी है ईमानदार के लिए, रोजा जरूरी है ईमानदार के लिए, बपतिस्मा लेना शिगिर्दियत का जरूरी है ईमानदार के लिए, दा यकी देना अगर आप दा यकी देना चाहते हैं, 100 में से 10 देना चाहते हैं हालेलुया, 20 देना चाहते हैं उससे दर्द नहीं होगी हालेलुया, अतवार को जाते हैं चर्च में हालेलुया, जुमे को आते हैं चर्च में हालेलुया, 7 दिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस कहती है बिला नागा दुआ करो, इससे कोई दर्द नहीं है। ये तमाम चीजें अहम हैं लेकिन इसका निजात के साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि निजात का तल्लक क्या है? सलीब पर जो काम मुकम्मल किया। तो पादरी साहब, वो पादरी साहब, खुदा के पादरी साहब, वो इस सच से वाकिफ ही नहीं, वो पुरानी ही बात में फंसे हुए थे कि निजात किससे है? ईमान से। और यही बहुत बड़ा क्या है? फसाद है जो यहाँ पर इब्लीस ने लोगों के शुरू किया हुआ। मेरे साथ एक हवाला देखें, हम इसकी थोड़ी सी इस पर गौर करेंगे। इफ़सियों 2 बाप उसकी 8 आयत, इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 2 बाप उसकी 8 आयत, जरा गौर से इन 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। बहुत दफा 2 आयतें पढ़ी जाती है और बंदे रुक जाते हैं 8वीं और 9वीं। सो 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला फजल ही से निजात मिलती है। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से, खुदा के फजल से क्या मिलती है? निजात मिलती है। निजात यानी कि गुनाह की उस तासीर से, गुनाह के उस बिगाड़ से हम बच जाते हैं, निजात याफ्ता हो जाते हैं, यानी कि बचाए हुए लोग।
और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, निजात हमारी तरफ से नहीं, किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। और नौवीं आए, और ना ईमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कहूँ कि जी मैंने ये 10 की 10 बातें की है, तो फिर यीशु मसीह की सलीब तो बेतासीर हो गई जी, फिर यीशु मसीह का काम तो बेकार कर दिया हमने कि हमने निजात इन 10 कामों से ली। मैंने उनको समझाया निजात ईमान से है, ईमाल से नहीं, लेकिन उसके बाद निजात पाने के बाद हमें ये सब काम करने की जरूरत है, दुआ भी करने की जरूरत है, रोजा रखने की भी जरूरत है, दायकी देने की भी जरूरत है, माफ करने की भी जरूरत है, वो तमाम ईमानदारी जिम्मेदारियों को करने की जरूरत है। तो 10वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। हम सब किस लिए मखलूक हुए हैं, पैदा किए गए हैं कि नेक अमाल करें, नेकी करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ये पैदाइश कौन सी है? नई पैदाइश। नई पैदाइश के बगैर हमारी नेकी खुदा के आगे मुर्दा है। क्या लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह में उन नेक ईमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यूनानी जुबान से कहती है कि इससे पहले कि हम पैदा होते खुदा ने वो तमाम नेक ईमाल हम सबको करने के लिए तैयार किया कि उनमें जिंदगी बसर करें। तो इन 3 आयात को, पहले निजात है, निजात ईमान से है, ईमाल से नहीं, और उसके बाद रोजा भी, दुआ भी, परस्तश भी, गवाही भी, मोहब्बत भी, और खुदा के लिए तमाम काम करने की जरूरत है। तो इसलिए कहा था ना मैंने कि अगर हम इन 4 बातों को छेड़ें तो हमारे महीनों गुजर जाएंगे यीशु मसीह के इस भेद को जानते हुए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जिनको तूने मुझे दिया है, बख्शा है, उनको मैं क्या दूं हमेशा की जिंदगी में।